नमस्कार, ब्रह्मकुमारीज के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर यह हमारी लाइव पेशकश बी द चेंज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और हर दिन की तरह मैं वापस लौट आया हूं आपसे करने बातचीत। और इस बदलते दौर में अपने बदलाव को लेकर जो भी हमें मदद की जरूरत है, उन मदद के लिए जो हमारे स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनके राय मशवरे लेने के लिए और उनके मदद के जो भी टूल्स वो हमें ऑफर करते हैं उन्हें यूज करने की हमारी छोटी सी कोशिश के लिए। ब्रह्मा कुमारी इसने एक छोटी सी पहल ये की है कि हम में से बहुत सारे लोग लॉकडाउन के चलते या रिस्ट्रिक्शंस के चलते बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स पे या फिर किसी मेडिटेशन सेंटर्स पे, रिट्रीट प्लेसेस में नहीं जा पा रहे हैं और इसके कारण उनके स्पिरिचुअल रिजुविनेशन के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए जो कमी महसूस हो रही है उसको पूरा करने की छोटी सी कोशिश है। और साथ में ये कोशिश ये भी रही है कि ये बदलता हुआ वक्त जो है इसके साथ कदम से कदम मिला के चलने में हम में से कुछ लोग सक्षम हो रहे हैं, मगर कुछ लोगों को थोड़ी मदद की जरूरत पड़ रही है, कुछ लोगों को थोड़ा सा पुश चाहिए हो रहा है, तो वो पुश हम दे सकें, एक पॉजिटिव हेल्प हम आपको दे सकें, ये कोशिश है। और आप सभी अपने दिल के दरवाजे खोलकर अपने घरों से बैठकर लाइव हमसे बातचीत करते हैं, अपने सवालों को बेझिझक हमसे पूछते हैं, इस बात की हमें भी बेहद खुशी है। हर दिन की तरह आज भी हमारे साथ एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में जुड़ेंगे। आज के हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी हैं, क्षमा करें, ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी हैं। दीदी जी ब्रह्मा कुमारी के अहमदाबाद अंबावाड़ी क्षेत्र के सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं और साथ साथ पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से वो ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं के साथ जुड़े हैं। उनके जीवन काल में उन्होंने लाखों लोगों को आध्यात्म के मार्ग पर मार्गदर्शन दिया है और उनका हाथ थाम कर आगे बढ़ाते ले चली हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं और इंटरनेशनल योग डे तक इस पूरे हफ्ते के दौरान हमारे साथ ऐसे अनेक महान विभूतियां, योगिनियां और योगी साथ में होंगी। उनसे उनके जीवन से जुड़े सिंपल स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को अप्लाई करने के सहज तरीकों को सीखेंगे। बिल्कुल वैसा ही है कि मक्खन निकालने की मेहनत नहीं है और उन्होंने अपने लाइफ में जो चीजें अर्जित की हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो दीदी वेलकम टू द शो, स्वागत है आपका।
नमस्कार, ओम शांति।
दीदी वक्त बदल रहा है ये सभी लोग समझ रहे हैं, कुछ लोगों को इस बात का भी इंतजार है कि ये वापस वक्त पहले जैसा कब हो जाएगा और बहुत सारे लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो ये चीज पूछ भी रहे हैं, जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तब देखा जाएगा। तो एक पोस्टपोनमेंट का एटीट्यूड आ रहा है हमारे अंदर कि तब देखा जाएगा, तब देखा जाएगा। क्या ये एक्चुअल में सही चीज है? क्या ये सही तरीका है कि हम पोस्टपोन करते जा रहे हैं कि जब चीजें वापस नॉर्मल पे आ जाएंगी?
ओम शांति। श्रीनिधि भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इस लॉकडाउन के दौरान हर एक के अंदर एक तो अनसर्टेनिटी है कि क्या सच में वो नॉर्मल समय वापस आएगा, और कुछ भी अगर उनको करना है तो यही सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम करेंगे। हम अगर अपने आप को देखें तो क्या हमारी ये सोच पॉजिटिव है? क्या हम अपने में ये सोच करके पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा भर रहे हैं कि जब समय ठीक हो जाएगा तब हम करेंगे? लेकिन हम सब ये जानते हैं कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति सदा काल नहीं रहती है, क्योंकि ये काल चक्र जो समय का है हर सेकंड परिवर्तन होता है और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, हम अपने आप को मोल्ड करें, अपने आप को एडजस्ट करें तो हम उसका एक आनंद, उसकी एक खुशी अनुभव कर सकते हैं। और ही जो हमको ये समय मिला है, हम अपनी बुद्धि को जो भगवान ने हमको दी है उसके द्वारा हम कुछ नई से नई क्रिएटिविटी करके अपने आप को भी बिजी रखें, साथ में अपने परिवार वालों को भी बिजी रखेंगे, तो जितना ये मन बिजी रहेगा उतना जो व्यर्थ नेगेटिव इररिलेवेंट थॉट्स हैं उन थॉट्स पर हम विजय प्राप्त करेंगे। तो अपने विचारों को मुझे एक नया डाइवर्शन देना है कि ये तो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जो कुछ मैं अपने जीवन में नया करूं, जो हम नया करना चाहते थे लेकिन कहते थे क्या करें, समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। और अभी स्वयं भगवान ने हमको समय दे दिया है, तो उस समय को हम पॉजिटिवली यूज करें कि जो समय मिला है उसमें ही हमारा कल्याण है, और ये जो कुछ भी हुआ है इसमें भी हमारा बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। ये एटीट्यूड जब हम लेंगे तो समय और परिस्थितियां दोनों हमको कॉपरेट करेंगी, और कुछ ना कुछ हमारे माइंड में इतने क्रिएटिव थॉट्स आएंगे जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे। सिर्फ जरूरत है विचारों के पैटर्न को चेंज करने की।
बहुत अच्छा दीदी, जैसे आप ये बात कह रहे थे समय के बारे में, एक मिलता जुलता सवाल कल पूछा गया था, और कल जो सवाल पूछ रहे थे उनका नाम है मिथुन, और उन्होंने ये सवाल पूछा था जो हम नहीं ले पाए थे कल। उनका सवाल ये था कि वो कह रहे थे कि उनकी शादी की डेट फिक्स हुई थी, और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो वो अब इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन हो गया है। वो कह रहे थे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, ये भी सोचने वाली एक बात आ जाती है। ये कोई बुरी चीज नहीं थी कि चलो पोस्टपोन ही हुआ है, बट मेरे साथ तो चलो ये बात है, बट कुछ लोगों के एग्जाम्स थे, कुछ लोग सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो गए, तो उनके ऊपर तो ये लटकती हुई तलवार हो गई है। उनको लग रहा है कि भाई ये हो जाता तो काम पूरा हो जाता। तो एक चीज जो कहते हैं ना, हैंगिंग इन द मिड एयर, ऐसा उनको लग रहा है। तो इस चीज को कैसे एड्रेस करें, क्योंकि ये अचानक हुआ और इसके लिए कोई रीजंस नहीं है जो मेरे कंट्रोल में।
राइट, मैंने नाम ठीक से सुनाई नहीं दिया, किसका ये प्रश्न है?
मिथुन नाम है दीदी
जी।
मिथुन,
मिथुन, मिथुन भाई, बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है कि आपने कहा आपकी एंगेजमेंट थी और शादी फिक्स हुई और लॉकडाउन के कारण वो डेट आगे चली गई है। देखो, शायद इसमें भी कुछ बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है कि वो डेट आगे चली गई है, क्योंकि इस सृष्टि के ऊपर जैसे कि शेक्सपियर ने कहा, वर्ल्ड इज ड्रामा, और इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हम सब रियल एक्टर्स हैं और स्टेज पर अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। शायद उसका अभी शादी का राइट टाइम नहीं आया था, इसलिए ये सिचुएशंस ने उसको पोस्टपोन किया है। शायद अभी आपको कुछ और प्रिपरेशन की आवश्यकता है, मेंटली अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं एग्जाम हो जाता तो हमारे सिर से ये एग्जाम का जो हवा है या बर्डन है उतर जाता और हम फ्री हो जाते। क्यों नहीं ये सोचते हैं कि एग्जाम नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, शायद गवर्नमेंट हमको बिगर एग्जाम के ही पास कर देगी और नेक्स्ट क्लास में भेज देगी, ये सोचेंगे तो हमको और खुशी हो जाएगी। इसलिए उसमें भी ये अच्छा है। वैसे भी जब एग्जाम्स आते हैं तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, थोड़ी देर एक्सटेंड हो जाए डेट तो अच्छा है, मेरे को अभी और प्रिपरेशन करनी बाकी है, तो हमको तो प्रिपरेशन के लिए भी और अधिक समय मिल गया है, होगा तो भी अच्छा है, और ऐसे ही अगर हमको पास कर देंगे तो भी अच्छा है। दोनों ही तरफ से हमको खुशी है, दोनों हाथ में हमारे लड्डू ही लड्डू है। इसलिए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को मुझे बनाने की जरूरत है।
बहुत ही अच्छी बात है दीदी, ये जो आप कह रहे थे कि पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखने की जरूरत है, कुछ हो रहा है तो उसमें हम अच्छा देखने की कोशिश करें। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सवाल पूछने हैं दीदी जी, क्योंकि हमारे साथ एक घंटा रहेंगे, अगर आपको कुछ भी पूछना है, सवाल ना हो, कोई ऐसी चीज है जो आप सिर्फ शेयर करना चाहते हैं, जिसके लिए आप गाइडेंस चाहते हैं, अगर सिर्फ एक शाउट आउट है जो आप हमें कोई चीज बताना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फेसबुक पर और YouTube पर, दोनों ही जगह आप लिख सकते हैं और उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे और मैं कुछ सवालों को आपके कमेंट्स से उठाकर दीदी जी से पूछूंगा। अगर आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो प्राइवेट हैं, जहां पर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, अपने नाम को गुप्त रखना चाहते हैं, तो आपके नाम प्राइवेट रखे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर ईमेल कर सकते हैं और वहां से भी हम कुछ प्रश्न लेंगे। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं कि बहुत बार ये होता है कि हमारे घर में जो लोग हैं उनके प्रति हमारे अंदर एक ऊंची भावना थी, ये हो सकते हैं ये हमारे लिए गाइड्स हों, हमारे लिए मोटिवेशन के सोर्सेज रहे हों, जिनके प्रति हमने हमेशा लुक अप किया है, और जब ये लॉकडाउन हुआ है तो उस दौरान हमें उनके बदले हुए स्वरूप को देखने का मौका मिला, उनको गलत तरीके से रिएक्ट करते हुए, कुछ जगहों पर झगड़ते हुए, कुछ जगहों पर उनको स्ट्रेस और परेशान होते हुए देखा, तो अचानक हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जिनके प्रति हम, जिनको हम लुकअप टू करते थे, वो लोग भी ऐसा करते हैं, ऐसा एक नेगेटिव कॉन्शियस हमारे अंदर डेवलप हो रहा है। और तरुण ये बात कहते हैं कि ये चीज मेरे को हैंडल करने में नहीं आ रही है कि मेरे फादर ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो तरुण ये सवाल पूछते हैं कि इसे मैं दूसरी तरीके से कैसे देखूं।
तरुण भाई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले आप मॉर्निंग में अपने ऑफिस में या अपने जॉब में या अपने बिजनेस में चले जाते थे और शाम को घर में आते थे, तो सारा दिन घर की क्या सिचुएशंस है उससे आप इतने अवेयर नहीं थे। लेकिन अब इस लॉकडाउन के कारण आप मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक सारा दिन घर में है, पेरेंट्स हैं, उनकी एज हो चुकी है, पहले वो सारा दिन या दिन में एक दो बार बाहर चले जाते थे या वॉकिंग करते थे, वो अपने एज ग्रुप के साथ में बैठ करके बातचीत करते थे तो उनको एक्सपोजर मिलता था। अभी वो सारा दिन घर पर है, बीइंग अ मैच्योर पर्सन, उनको कुछ एक्सपोजर चाहिए। तो अगर मैं थोड़ी देर उनके पास में बैठ करके उनसे इंटरेक्शन करूं, उनसे बातें करूं, तो उनका जो अंदर का इरिटेशन है वो सारा निकल जाएगा, क्योंकि अभी उनके सामने बाहर जाने की कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो उन बड़ों के जो मन की स्थिति है, उनकी जो अंदर की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को मुझे समझने की कोशिश करनी है। हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि हम बाहर सोशल में अपने जॉब बिजनेस में ज्यादा हैं, हम उस दृष्टि से उनको देखते हैं। लेकिन जब सारा दिन मैं घर में हूं तो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ एक तो रहने का इतना अच्छा मौका मिला है जो मुझे पहले मिलता नहीं था। इसलिए अब जबकि उनके साथ में हूं, एक पेरेंटल सस्टेनेंस क्या होती है, मैं उस भावना से उनकी दृष्टि को देखूं, उस दृष्टि से देखूं कि इन्होंने मुझे अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कितनी रात दिन मेहनत की होगी और मुझे कितना योग्य बनाया। अगर आज उन्होंने मुझे कुछ कह भी दिया तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, मैं उस पर रिएक्ट नहीं हूं। चाहे फादर रिएक्ट हुए, वो बड़े हैं, मुझे नहीं बोलेंगे तो वो किसको बोलेंगे, क्यों? वो अपने समय को देखते हुए मुझे वो बात कह रहे हैं। थोड़ा सा इसमें जनरेशन गैप हो जाता है, उस जनरेशन गैप के कारण से उनकी जो मेंटल की स्थिति है मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करूं, उनका भाव मेरे ऊपर रिएक्ट होने का नहीं है, उनका भाव मुझे समझाने का है। लेकिन चूंकि मेरा एटीट्यूड डिफरेंट हो गया है कि बड़े ऐसे क्यों रिएक्ट होते हैं, बड़े क्यों रिएक्ट हुए नहीं, बड़े मुझे कुछ ना कुछ अपने अनुभवों के आधार पर इशारा दे रहे हैं, उस इशारे को मुझे समझने की कोशिश करनी है। जब मैं अपनी अंदर की ये भावना को शुभ रखूंगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूं, इसके कारण से हमारा बड़ों के लिए जो रेस्पेक्ट होना चाहिए वो कम हो जाता है कि ये मेरे को क्यों बार बार टोकते हैं या क्यों बार बार मुझे कहते हैं। वो टोकते नहीं हैं, वो कहते नहीं हैं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करेक्शंस या मुझे कुछ सुधरने के लिए इशारे दे रहे हैं। तो जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो मैं कभी भी उनके ऊपर भी रिएक्ट नहीं होंगी और ही एक्सेप्ट करूंगी, और जितना मैं एक्सेप्ट करूंगी उतना हमारा आपस में प्यार बढ़ेगा और समीपता एक दूसरे में आती जाएगी।
बहुत ही अच्छी बात कही दीदी आपने। एक ऐसा प्रश्न है, मेरे ख्याल में तीन चार लोगों के मिले जुले प्रश्न हैं और मैं तीनों को एक साथ लेने की कोशिश करता हूं। विनीता जायसवाल जी का प्रश्न है और रोहित शुक्ला जी का प्रश्न है, ये दोनों लोगों का प्रश्न मिलता जुलता है। विनीता जी का सवाल है, विनीता कहते हैं, मुझे इस समय बहुत डर लग रहा है कोरोना को लेकर, कृपया इसका समाधान बताएं। और रोहित शुक्ला जी का भी प्रश्न सिमिलर है, वो कहते हैं, दीदी ओम शांति, मुझे बहुत डर लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, मेरी फैमिली को लेकर भी उनको डर महसूस हो रहा है, तो प्लीज गाइड मी, ये कहते हैं। और एक और मिलता जुलता सवाल है बबीता अग्रवाल जी का, वो भी फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है कोरोना से, आप बताएं हम क्या करें। ये एक कॉमन सा ट्रेंड बनता जा रहा है दीदी, बट इस चीज को एड्रेस करने के लिए हम सोर्सेस ढूंढ रहे हैं, तो शायद यही इस कोशिश की वजह भी है।
बबीता जी, विनीता जी और अग्रवाल जी, आप तीनों एक ही लाइन में आ गए हैं और कोरोना के नाम से ही डर रहे हैं। अब शब्द है कोरोना, करो ना, क्या ना करो, पहले तो हम यही सोच लें कि क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है अगर वो करेंगे तो डर लगेगा, तो हमको पहली बात कही डिस्टेंसिंग रखो, तो डिस्टेंस रखेंगे तो डर नहीं है, मास्क पहनो तो डर नहीं है, बार बार अपने हाथों को धो तो डर नहीं है। अगर हम ये तीनों कर रहे हैं तो कोरोना का कोई डर नहीं है। परंतु डर क्या है, मेरे मन की कमजोरी है जो हमको डराती है। आज तक इतनी बीमारियां, इतने रोग फैले, हम नहीं डरे हैं, लेकिन चूंकि ये एक ऐसी डिजीज है जो सारे विश्व में एक साथ फैल गई है, इसलिए इससे हम भयभीत होते हैं। और भयभीत क्यों होते हैं, डर किस बात का लगता है हमको, पता नहीं मैं मर गए तो, या मेरा कोई संबंधी मर गया तो, आखिर एक दिन तो हम सभी को जाना है और उस जाने के लिए कोई ना कोई कारण तो बनेगा। महाभारत में भी युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में एक चीज निश्चित है, मृत्यु, फिर भी मनुष्य को उससे भय लगता है। तो वास्तव में मृत्यु से भय नहीं लगता है, लेकिन उसने जो इतना सारा अपना विस्तार बनाया है, इतनी धन संपत्ति समृद्धि नाम मान शान प्राप्त किया है, वो सारा उसके पास से चला जाएगा और वो उस दुनिया में नहीं रहेगा, इसका उसको भय लगता है। यहाँ इस विद्यालय में हमको पढ़ाते हैं कि परमात्मा हजार भुजाओं वाला मेरे साथ में है, तो मुझे डरना किससे है। व्यक्ति को डरना चाहिए पाप से, डरना चाहिए गलतियों से, डरना चाहिए बुरे कामों से, उसका मुझे डर लगे ना। कोरोना से मैं क्यों डरूं, वो भी एक बीमारी है ना, आएगी और चली जाएगी, इसमें डरने की क्या बात है। मेरा साथी कौन है, दुनिया का ही गीत बना हुआ है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अरे मीरा ने तो जहर पी लिया तो भी वो जहर से भी वो डरी नहीं और उसका जहर अमृत हो गया। हम जितना इससे डरेंगे उतना वो मुझे डराएगा। जैसे छोटे बच्चे टाइगर से डरता है, हम पेपर टाइगर बना के उसको डराएंगे, नहीं डराया, वो और डरेगा, हमको और मजा आएगा। तो कोरोना भी मुझे ऐसे ही डरा रहा है। हम निर्भय बने, और डर तब लगता है जब व्यक्ति अपनी बॉडी की कॉन्शियस में होता है। बॉडी कॉन्शियस उसको डराती है। इसलिए हम अगर अपने आप को 5 तत्वों के शरीर से परे, हम ये सोचते हैं कि हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है, आत्मा न जलती है न मरती है न कटती है न उड़ सकती है, तो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, मैं वास्तव में इस शरीर से भिन्न एक अविनाशी आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आत्मा के अंदर वो शांति की शक्ति भरती है, और शांति की शक्ति उसको निर्भय बनाती है, क्योंकि ये विकार, ये बुराइयां, ये रोग, ये अनसर्टेनिटी, ये इकोनॉमिक जो डाउन हुआ है, ये सब हमको डरा रहे हैं, सिर्फ एक कोरोना नहीं है। तो चारों तरफ का वातावरण जो भयभीत हो गया है, वो मुझे भयभीत कर रहा है, मुझे भय करने की कोई भी कारण नहीं है। ट्रीटमेंट करेंगे, ओके हो जाएगा, जितना मैं डरूंगी उतना मानसिक दृष्टि से मैं कमजोर अपने आप को बनाऊंगी। मुझे इसलिए अपने आप को भयभीत करने की जरूरत नहीं है। हम अपने मनोबल को और अधिक बढ़ाएं, हम हिम्मतवान बने, हम स्वयं को शक्तिशाली विचार दे करके शक्ति स्वरूप बनाए कि कोई भी परिस्थिति सामने आएगी, मुझे हिम्मत से शक्ति स्वरूप होकर के उसको फेस करना है। और जितना हम अपने को डिसिप्लिन में रखेंगे उतनी हमें प्राप्ति होगी, और हम अपने आप को सेफ रखेंगे। पर व्यर्थ के विचार चला करके हम खुद अपनी सिक्योरिटी को कमजोर करते जाते हैं, और अपने चारों तरफ का जो ऑरा है वो भय का ऑरा क्रिएट कर देते हैं। मुझे भय का ऑरा क्रिएट नहीं करना है, लेकिन अपने साथ साथ भगवान पर विश्वास करके हम अपने अंदर वो ईश्वर की शक्तियों को कि मेरा साथी कौन है, मेरा रक्षक कौन है, मेरे को बचाने वाला कौन है, उसकी याद में हम जब रहेंगे तो हम भयभीत नहीं होंगे।
बहुत अच्छी बात है दीदी जो आपने ये बात कही। अक्सर करके अगर हम अपने आप को भी कमजोर समझते हैं, बट ये याद रखना कि हम किसके हैं, कौन हमारे साथ है, ये एक पॉजिटिव इनपुट देता है। और हम हमेशा भगवान को मदद के लिए बुलाते ही हैं, और हमेशा उनको सपोर्ट के रूप में देखते हैं। अगले सवाल के प्रति मैं आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल लेने के लिए जो दोस्त हमारे सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास प्रश्न है, अगर आपके पास कोई विचार है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात है जो आप सिर्फ बताना भी चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और उनमें से कुछ कमेंट्स को हम यहाँ स्क्रीन पर दिखाएंगे और कुछ सवालों को हम दीदी से लेंगे। रवि हमारे साथ जुड़े हैं, रवि सरीन नाम है इनका, और ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि फीडबैक देते हैं, शुक्रिया दीदी बहुत अच्छा समझाया कि हम निर्भय आत्मा है और शक्ति स्वरूप आत्मा है। थैंक यू वेरी मच रवि फीडबैक देने के लिए। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ फीडबैक्स हैं जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। निशा कहती हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन फॉर गेटिंग स्केयर्ड, अगर आप ये सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच निशा फेसबुक पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीदी एंड सर जी आई वॉन्ट टू थैंक यू, आई गेट ईच एंड एवरी आंसर फ्रॉम यू, थैंक यू कहते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है निशा की अगर हम कुछ मदद कर सकें, कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकें, तो ये हम सबके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है आगे बढ़ने के लिए। फेसबुक से हमारे साथ ओजस ठक्कर जुड़े हैं, और फेसबुक पे वो लाइव देख रहे हैं, और वो पूछते हैं सुख और दुख क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है, ये प्रश्न पूछते हैं। और ये इसलिए भी अहमियत है क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय पर दुखी हैं, तो एक प्रश्न ये भी पिछले दिनों कुछ लोग बातचीत के दौरान कमेंट्स में कह रहे थे कि ऐसा क्या किया है कि हम सारे लोग इतने दुखी हो रहे हैं इकट्ठे, तो इसके बारे में भी जानकारी देंगे।
बहुत अच्छा ओजस भाई, कि सुख और दुख क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है, सुख किससे होता है और दुख किससे होता है। हम सब इस कर्म क्षेत्र पर हैं और कर्मों की जो फिलॉसफी है वो हम सबको सुख और दुख का कारण समझाती है। व्यक्ति दुख कब महसूस करता है और क्यों महसूस करता है, सारे दुखों का कारण हमारा बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमान है। जिस देह अभिमान में 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, तेरा और मेरा, इनके वश होकर के जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म हमको दुख देता है, अथवा कोई भी मेरे से आगे बढ़ता है, उसकी प्रोग्रेस होती है, मैं उनकी प्रोग्रेस नहीं देख सकती हूँ, उसका मुझे दुख होता है। मैं अपने आप को उससे कंपैरिजन करना शुरू करती हूँ, कंपटीशन करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे की कंप्लेंट्स करते हैं, तो हम दुखी होते हैं। इन सब बातों से ऊपर उठ करके जब हम अपनी सोल की कॉन्शियस में अपने अंदर एक शुभ भावना से, एक शुभ भावना, शुभ कामना से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, अपने अंदर की मर्सीफुल भावना से जब कोई भी कर्म करते हैं, एक दो को कॉपरेट करते हैं, एक दो के साथ हमारी हार्मनी होती है, तो हर एक इंसान अपने अंदर एक सुख फील करता है, एक सुकून अनुभव करता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और सड़क पर एक ब्लाइंड मैन, उसको रोड क्रॉस करनी है, वो नहीं कर पा रहा है और हमने उनको सपोर्ट दे करके रोड क्रॉस कराई, थोड़ी देर के बाद आप अपने अंदर झांक करके देखिए आपको कितना अच्छा लगता है कि आज मैंने एक अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस कराई, उसका कितना सुकून अनुभव होता है। तो जो निस्वार्थ भावना से हम करते हैं, वो निस्वार्थ भावना से किया हुआ कर्म, दूसरों को दिया हुआ कॉपरेशन हमको सुख देता है। और अगर विकारों के वशीभूत होकर के स्वार्थ की भावना से हम जो कुछ करते हैं उसका रिएक्शन हमारे ऊपर होता है। वैसे भी कहा जाता है ईच एंड एवरी एक्शन हैव ए सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हम सब बहुत अच्छी तरह से कर्म फिलॉसफी को जानते हैं। इसका निर्माण कौन करता है, कोई दूसरा नहीं करता है, उसके लिए मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ। जब हम कोई भी गलत कर्म करते हैं, हम कोई भी बुरा काम करते हैं, उस समय हम नहीं सोचते हैं कि मैं ये गलत कर रही हूँ या मैं किसी दूसरे को गिराने के लिए कर रही हूँ, लेकिन जब उसका रिजल्ट मेरे सामने आता है तब हम कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कर्म क्या भगवान ने किया? कर्म तो मैंने किया, तो जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा करूंगी तो सुख मिलेगा, बुरा करूंगी तो दुख मिलेगा। करने वाली मैं आत्मा खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ। तभी गीता में भी भगवान ने कहा हे अर्जुन तू कर्म कर, कर्म के फल की इच्छा मत कर। आज हम इच्छाएं करते हैं, आशाएं करते हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमको दुख देती हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से ट्रस्टी होकर के हम कर्म करें और उसके रिजल्ट से हम परे रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सारे दोस्त सवालों का उत्तर जब जानते हैं, जब उनको पता चलता है कि ऐसे सिंपल आंसर्स ही मिलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो अपने फीडबैक्स भी शेयर करते हैं। तो आप वो फीडबैक्स लिख सकते हैं दोस्तों कमेंट्स में और उनमें से कुछ फीडबैक्स हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, वो इसलिए क्योंकि ये कुछ लोग हैंडल कर रहे हैं इस चीज को अपने लाइफ में। गिरीश राकेश नाम है इनका। गिरीश जी का प्रश्न ये है कि सर बहुत डिप्रेशन में है पहले से, लेकिन लॉकडाउन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नाइट्स को सो नहीं पा रहा हूँ, यहाँ तक कि कोई पास में थे सबसे लड़ाई हो चुकी है और उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार बहुत बुरा बुरा माइंड में आता है, जो पास्ट में लाइफ में कुछ गलतियां की हैं तो उन्हें भुला नहीं पा रहा हूँ, ये कहते हैं। दीदी गिरीश जी तो अपना सवाल बहुत ब्रेव होके पूछ रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं फेसबुक पर, लाइव है हमारे साथ। मगर ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस रहे हैं, जिसके कारण अभी लॉकडाउन में या कोरोना वायरस के टाइम पे ये सिचुएशंस बहुत उनके लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है, और ये बहुतों की समस्याएं हैं जो रात को नहीं सो पा रहे हैं, और जिनके साथ हम लोगों का रिश्ता था उनसे भी लड़ाई झगड़ा जैसा हो गया है, तो बहुतों की बातचीत भी बंद है, तो क्या करें ऐसे सिचुएशंस में।
गिरीश भाई आपका प्रश्न राइट है, एक डिप्रेशन और दूसरा साथ में प्रेजेंट सिचुएशंस और नींद का ना आना व्यक्ति की एनर्जी को बिल्कुल लो कर देता है, डाउन कर देता है, नींद नहीं आती है। मैं इसकी एक बहुत अच्छी आपको टेक्निक देती हूँ। देखो जैसे एक ड्राइवर है, कार ड्राइव करता है, सारा दिन ड्राइविंग में है, और रात को वो अपनी कार को गैरेज में छोड़ करके और अपने घर सोने के लिए चला जाता है। हम आत्मा इस शरीर रूपी मोटर का ड्राइवर है, सारा दिन इस शरीर रूपी मोटर से हमने काम किया, इसको यूज किया है, अब रात को मैं आत्मा इस शरीर रूपी मोटर को इस दुनिया की गैरेज में छोड़ दूं और अपने अंदर संकल्प करूं, विचार करूं, हे परमात्मा आप सबको शांति देने वाले, सुख देने वाले, खुशी देने वाले हो, अब मैं आत्मा आपके पास में विश्राम करने के लिए आ रहा हूं। 5 मिनट बैठ करके अपने मन को ये थॉट दीजिए और इन्हीं विचारों के साथ में मैं शुद्ध पवित्र आत्मा आपकी गोदी में विश्राम करने आ रही हूं। अपने आप को ये विचार देते देते आप अनुभव करेंगे आप सो जाएंगे, और सुबह जब उठेंगे आप महसूस करेंगे मुझे बहुत अच्छी साउंड स्लीप आई। आज आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा। दूसरी बात आपने कही, पास्ट की बातें, कुछ ऐसी गलतियां या कोई ऐसे इंसिडेंट्स या कोई ऐसे कर्म हुए जो मैं भूल नहीं पाता हूं। पास्ट को हिंदी में कहा है भूत। अगर हम भूत को याद करेंगे तो क्या होगा, मुझे भूत लग जाएगा, चिपक जाएगा। इसलिए सदा कहा पास्ट इज पास्ट करो, उसको फुल स्टॉप लगाएं। पास्ट की उन बातों को याद करो जिसने मुझे बहुत सुख दिया है, जिन पास्ट की बातों ने मुझे बहुत खुशी दी है, ऐसी वो पास्ट की स्मृतियां अपने अंदर इमर्ज करें, बजाय इसके कि जो भूले और गलतियां हैं मैं उसको याद करूं। आप पेपर पेन लेकर के वो खुशी के जो आपके घटनाक्रम के अंदर आपके जीवन में जो खुशी के इंसिडेंट्स आए हैं, जिसमें आपको बहुत आनंद मिला है, बहुत सुकून मिला है, आप उनको एक एक करके नोट करिए अपने पास में। आप वो जब नोट करना शुरू करेंगे तो आपके मन के सामने वो दृश्य इमर्ज हो जाएगा, कितना अच्छा था वो समय, कितना अच्छा था जब हम ये आनंद करते थे। तब कहा बचपन के दिन भूल ना जाना, तो अपने उस बचपन को आप याद करिए जिसमें आपको बहुत खुशियां मिली, उन स्मृतियों को आप इमर्ज करें। वो जब इमर्ज करेंगे तो स्वतः ही जो आपको बातें नहीं भूलती हैं वो भूलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैं अपने मन को जो अभी फीड कर रही हूँ वो खुशी की स्मृतियों को लेकर के आ रही हूँ, और खुशी की स्मृतियां मुझे खुशी के उन पलों में फिर से वहां ले जाएंगी, और वो जब ले जाएंगी तो मेरा सोचने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरा व्यवहार बदल जाएगा, और चेहरा क्या होगा, खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो मेरे मन में जब नेगेटिव चल रहा है तो मेरा चेहरा कैसा होगा, तो जो आसपास के लोग हैं कोई मेरे से बात करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जब चेहरा खुशनुमा हो जाएगा खुशी की बातें याद करते हुए, वो इंसिडेंट्स याद करते हुए, मेरी स्मृतियां वो ताजी हो जाएंगी, तो सब सोचने लगेंगे इसको क्या हुआ है, ये तो आजकल बड़ा खुश नजर आता है। और वो जब उनके अंदर ये भाव जाएगा तो सब मेरे नजदीक आने शुरू होंगे, भाई तूने क्या किया है जो तू आजकल बहुत खुश दिखाई देता है। तो मैं खुद खुद का डॉक्टर बन करके अपनी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करूं तो मेरे अंदर का जो भी डिप्रेशन है वो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और सब मेरे नजदीक आने शुरू हो जाएंगे।
जी मैं समझता हूँ ये जो आपने अभी एक्टिविटी कही है ये हम सभी को करना है, अगर हमें कोई समस्या है भी या नहीं भी, पेपर पेन लेके बैठना जरूर है और अपनी खुशी के पलों को याद करने की जरूरत है, और उन स्मृतियों में वापस जाते हैं तो वो चीजें एक्चुअल में पता चलती है कि हमारे लाइफ में कितनी अच्छी चीजें हुई हैं। ये बहुत ही ट्रेजेडी है ह्यूमन माइंड की, हम अपने सफरिंग्स को याद करते हैं बट हमारे खुशी के पलों को हम भूलते चले जाते हैं, हालांकि इसका उल्टा होना चाहिए। बहुत सारे दोस्त इसके लिए फीडबैक भी दे रहे हैं दीदी कि आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि मन में प्रश्न उठने से पहले ही आप जवाब दे देते हैं, ऐसे भी कुछ लोगों ने फीडबैक दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के फीडबैक्स के लिए। कुछ फीडबैक्स हमें ये भी मिले थे कि बहुत सारे दोस्त हमसे कह रहे थे कि हम सिर्फ 5 मिनट हर दिन मेडिटेशन कर पाते हैं इस प्रोग्राम के दौरान, कुछ ज्यादा मेडिटेशन के लिए टाइम होना चाहिए। तो उन सभी दोस्तों के लिए जो भी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर, यानी ब्रह्मा कुमारीज के जो फेसबुक पेज है facebook.com/ब्रह्मा कुमारीज और youtube.com/ब्रह्मा कुमारीज पर हर दिन शाम को 5:30 बजे भारत के लोकल टाइम अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर 15 मिनट के लिए ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन कराया जाता है। इंग्लिश में ये प्रोग्राम होता है जहां पर आप 15 मिनट्स के लिए ऑनलाइन मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अकेले नहीं कर रहे हैं, आपके साथ हजारों लोग जुड़ते हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो अपने आप में एक मोटिवेशन है कि हम साथ में मिलकर कर उसका असर होता है। तो आप सभी लोग जो भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, भले मेडिटेशन के लिए नए हैं, आप नहीं भी जानते हैं, तो वो सभी लोग ये चीज कर सकते हैं। सो द ऑनलाइन मेडिटेशन विल हैपन इन इंग्लिश एवरी इवनिंग 5:30 PM इंडिया टाइम। अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शारदा दीदी हमारे साथ हैं और दीदी बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सिंपल स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आज हम जो बातें सुन रहे हैं वो शायद होमवर्क के लिए भी हैं कि हमें कुछ करने के लिए मिल रहा है कि आज शायद हम बैठकर कुछ चीजें इस सेशन के बाद कर सकते हैं। अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ। अगला सवाल हमारे साथ पूछते हैं सुनंदा वर्मा जी, आप क्षमा करें, जिगर चौहान जी का सवाल है। जिगर का प्रश्न है, फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। ओम शांति, अभी कोरोना के टाइम अगर सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है तो वो स्टूडेंट्स को है, तो अभी हम टीचर्स ऐसा क्या सोचें या करें जो स्टूडेंट्स को घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई में फायदा हो, इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। सवाल से ये पता चलता है कि जिगर बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं और वो कहते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो बच्चे ऑनलाइन तो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं बट हम घर बैठे बच्चों की मदद करने के लिए ऐसा और क्या कर सकते हैं, वो पूछते हैं।
बहुत अच्छा जिगर भाई, आपको न्यू जनरेशन और यूथ जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा शुभ विचार आया है कि आप उनकी स्टडी तो ऑनलाइन करा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में और क्या ऐड किया जाए जो सोने में सुहागा हो जाए। तो सबसे पहले एक तो उनका मनोबल इस समय बढ़ाने की आवश्यकता है, जो उनके मन में कोई भी कमजोर संकल्प नहीं आए कि आखिर भी ये सब कब तक चलेगा। दूसरी बात, उनमें एक हिम्मत, उमंग और उत्साह, और सबसे बड़ी बात है उनके अंदर हम वैल्यूज को डेवलप करें, उनके अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं, उन छुपी हुई शक्तियों को हम इमर्ज करने के लिए उनको कुछ ऐसे क्रिएटिविटी के प्रोजेक्ट्स दें जो वो बैठे हुए खुद उनको क्रिएट करें, जिसमें उनका माइंड चले और उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, जो एक कुछ नई चीज वो करके दिखाए। और वैल्यूज की क्या इम्पोर्टेंस है उस बात को हम रियलाइज करें, चाहे हम उनको हिस्ट्री के अंदर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल आदि आदि के उनकी लाइफ की स्टोरीज बताते हैं, उनकी विल पावर, उनके मनोबल कितने स्ट्रांग थे, उन्होंने अपने जीवन के अंदर सत्य, अहिंसा आदि आदि ये प्रिंसिपल्स, ये वैल्यूज एडॉप्ट की हैं, और उन वैल्यूज के एडॉप्ट करने पर ही आज उनका विश्व के अंदर नाम है। तो वो वैल्यूज हम अपने अंदर जब धारण करते हैं, तो वो वैल्यूज दुनिया के किसी भी कोने में मुझे काम में आएंगी। और आज प्रैक्टिकल में समाज को जो ये सिनेरियो इतना बदलता जा रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल है, फैमिली है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, किसी भी क्षेत्र को हम ले लेते हैं, आज वैल्यूज का डिग्रेडेशन होता जा रहा है। और उसी का कारण आज ये परिस्थितियां हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं, लेकिन अभी समय आ गया है फिर से हम उन वैल्यूज को रियलाइज करें, और रियलाइज करके हम फिर से भारत जो सोने की चिड़िया था, पुनः उसको वो सोने की चिड़िया बनाने के लिए, जिसके लिए हम लोग हिस्ट्री में सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, जब दो चाइनीज यात्री ह्वेनसांग और फाइयान भारत में आए थे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, चोरी नहीं होती थी। पुनः मुझे भारत को फिर से ऐसा बनाना है, तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में उन वैल्यूज को हम अपने में कैसे अडॉप्ट करें, तो एक एक वैल्यू को लेकर के उसकी सुंदर सी कोई स्टोरीज, कोई एग्जांपल्स हम उनों को दें, जिससे उनको मोटिवेशन मिले, उनको इंस्पिरेशंस मिले, और वो उन वैल्यूज को प्रैक्टिकल में लेकर के आए, और उसके साथ साथ उनको कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाएं जिन वर्ड्स के बेस के ऊपर, चाहे तो वो कोई पेंटिंग बनाए, कोई ड्राइंग बनाए, कोई स्केच बनाए, कोई स्टोरीज बनाए, और उसको बनाएंगे तो उनकी ये मन जो है क्रिएटिव होगा, एक्टिव होगा, और उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा। और जब कोई सुंदर चीज उनसे निकल करके आएगी, वो उनको एक और खुशी देगी और एंथुजियाज्म में उनको लेकर के जाएगी। तो ये हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, आप उनसे ये करा सकते हैं, तो उनको भी खुशी होगी, और आपको जब वो करके देंगे तो आपकी भी खुशी बहुत बढ़ेगी, और स्टूडेंट्स आपको दुआएं देंगे, आप स्टूडेंट्स को दुआएं देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा होमवर्क किया।
बहुत अच्छी बात है दीदी। मैं समझता हूँ ये आजकल के समय के हिसाब से थोड़ा बदलने की जरूरत है। ठीक है, हम क्लासेस कराते हैं, बट ये समय ये भी डिमांड करता है कि हम थोड़ा क्रिएटिव हों, और क्रिएटिविटी भी कुछ ऐसी अच्छी हो जो पहले नहीं सोची गई थी। मूल्याधारित शिक्षा पर बहुत चर्चा होती है, बातें होती हैं, और शायद उन चीजों को आज प्रैक्टिकली करने के लिए और लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का ये अच्छा मौका है। अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ, ये भी सवाल टीचर से मिलता जुलता है। निकिता परवानी, इनायत कपूर इनका नाम है, और ये सवाल पूछते हैं कि कोरोना की वजह से टीचर्स को डिसकंटिन्यू करने को कहा गया है, तो उस सिचुएशन में खुद को कैसे हैंडल करें। बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है जहां पे टीचर्स रेगुलर क्लासेस ले रहे थे, अभी कुछ जगहों पर तो ऐसा बताया गया जो प्राइमरी के बच्चे हैं, प्राइमरी में क्लास 2 तक के बच्चे हैं, उनके लिए कोई क्लासेस नहीं होगा। तो कुछ जगहों पर टीचर्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो काम था जिसमें वो एंजॉयमेंट लेते थे बच्चों के साथ बैठ के, जो करने में उनको मजा आता था, जो लाइफ का पर्पज उनको लगता था कि हाँ ये हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, उस चीज से थोड़ा डिस्कनेक्ट महसूस हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करें जब हम वो चीजें जो हम चाहते हैं, जो हमें पसंद आता है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, पहले कहा ऑनलाइन क्लासेस करिए और फिर कह दिया अभी आप छोटे बच्चों को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। दोनों ही बातों में कल्याण है, क्योंकि एक तो बच्चे छोटे हैं और वो छोटे बच्चे जब ऑनलाइन पहले उन्होंने सीख लिया, जब कंटिन्यू ऑनलाइन वो कंप्यूटर पर फोकस करके बैठते हैं, तो अभी हम भी बड़े अगर 1 से 2 घंटा बैठते हैं तो वो कंप्यूटर की जो रेज है उसका हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट होता है। तो बच्चों का माइंड तो और भी ज्यादा डेलिकेट होता है, और जब कंप्यूटर पर बैठते हैं तो बच्चे तो गेम्स ये वो सब बहुत कुछ करने लग जाते हैं, तो और ही माइंड के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज आनी शुरू हो जाती हैं, और एक्टिविटी पॉजिटिव की बजाय स्टडी की बजाय उनका ट्रैक चेंज हो जाता है। लेकिन आप उनको 2 महीने के लिए ऐसा एक क्रिएटिव होमवर्क 15-15 दिन का दे दीजिए, जिसमें वो खुद ही बैठ करके अपने माइंड को मोटिवेट करें और मोटिवेट करके कुछ ऐसी नई इन्वेंशंस करें, क्राफ्ट की करें, ड्राइंग्स की करें, कुछ स्टोरीज बनाएं, कुछ ऐसी फ्यूचर की उनको कहें प्लानिंग बनाओ कि अगर आप ये बनेंगे तो आप क्या करेंगे। कुछ आर्टिकल्स के उनको टॉपिक्स दे दीजिए कि रोज आपको इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, और ये प्रेजेंट सिचुएशंस है, आप इससे छूटने के लिए, इसमें अपने को बिजी करने के लिए आप लोग क्या करेंगे। ऐसे ऐसे कुछ क्रिएटिव टॉपिक्स उनको दे करके, कुछ एक्टिविटीज उनको दे करके उनको पर्सनली इन्वॉल्व कर लीजिए। उसके साथ साथ एक सेल्फ कंटेंटमेंट के लिए, क्योंकि आपके अंदर भी ये रहेगा कि हमने बच्चों को बीच में छोड़ दिया है, क्योंकि मैं टीचर हूं तो टीचर की स्टूडेंट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, हम उन बच्चों को इतने पावरफुल वाइब्रेशंस दें, इतनी उन बच्चों के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखें कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनका मन और बुद्धि सदा पॉजिटिव रहे, ये रॉन्ग साइड पर नहीं जाए, ऐसी उनों को शक्तिशाली शक्तियों के वाइब्रेशन दे करके हम उनों की अपने स्थान पर बैठे हुए भी ये सूक्ष्म टीचिंग्स उनको हम दे सकते हैं, और हमारे ये सूक्ष्म जो वाइब्रेशंस हैं उनको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। ये और ही ज्यादा एक पावरफुल स्टडी होगी, जैसे साइंस टेलीपैथी से जो मैसेज जिसको देना चाहती है दे सकती है, तो हम टीचर्स प्रैक्टिकल में इस टेलीपैथी को यूज करके उन्हों को ये पावरफुल वाइब्रेशंस भेजें।
बहुत ही अच्छी बात है दीदी, बातों बातों में लगभग हम 50 मिनट पे आ चुके हैं, और सवाल बहुत सारे हैं, सारे सवाल मैं नहीं ले पाऊंगा, और मैं अपने दोस्तों से पहले से ही माफी मांग लेता हूँ। कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लें। आखिरी सवाल आज के दिन के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, जिगर थैंक यू कहते हैं, आपने जवाब दिया उनके प्रश्न के लिए, थैंक यू सो मच जिगर। वो कहते हैं थैंक यू सो मच दीदी, सच में बहुत ही उमंग उत्साह वाली पॉजिटिव माइंड एक्टिविटी आपने बताई, शुक्रिया कहते हैं, थैंक यू जिगर आपका भी। आखिरी सवाल मैं बकुल जी का लेना चाहता हूँ। बकुल हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब से, और वो कहते हैं कि आत्मा की शक्ति मन को कंट्रोल करने से सारी शक्तियां केंद्रित होंगी, लेकिन ऐसा कैसे करें, बेकाबू मन को संयम में कैसे रखें, ये प्रश्न पूछते हैं बकुल। ये हमारे साथ YouTube पर जुड़े हैं, ये आज के लिए आखिरी प्रश्न होगा।
बहुत अच्छा बकुल भाई, आपने पूछा कि मन को कैसे कंट्रोल करें और आत्मा की शक्ति कैसे कंट्रोल हो। पहले तो मुझे आत्मा को समझने की बात है कि आत्मा वास्तव में है क्या और ये मन क्या है। जैसे एटम है, एटम किसको कहते हैं, उस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये तीन उसकी फैकल्टीज हैं। अगर इन तीनों को एटम से अलग कर दें तो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार वो एटम है, ये आत्मा है। आत्मा की तीन फैकल्टीज हैं, माइंड, इंटेलेक्ट और इम्प्रेशंस, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है आत्मा की विचार शक्ति, बुद्धि है उसकी निर्णय शक्ति और संस्कार है उसकी आदतें और स्वभाव। अब मन को कंट्रोल कैसे करें? ड्राइवर पूछे कार को कंट्रोल कैसे करूं? अगर ड्राइवर को अपनी कार कंट्रोल करने नहीं आती तो उसको ड्राइवर कहा ही नहीं जाएगा। तो मैं आत्मा इस बॉडी का कंट्रोलर हूं, मैं आत्मा इस बॉडी का रूलर हूं। मुझे जो सोचना है, जो डिसीजन लेना है, जो करना है, जब करना है, जैसे करना है, आत्मा उसका कंट्रोलर है, मास्टर है। तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसके ऑर्डर में चाहिए। तो एक तो ये स्थूल सेंस ऑर्गन्स हैं, तीसरा जो आत्मा की ये तीनों सूक्ष्म शक्तियां हैं और उसमें सबसे बड़ा चंचल जो उसका मन है, जिस मन के लिए कह देते हैं तो घोड़ा है, भागता है, क्योंकि उसकी लगाम है ही नहीं। और कभी हमने अपने मन को ठीक रीति से समझने की कोशिश नहीं की। व्यक्ति के मन में कितने विचार चलते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डाटा, एक व्यक्ति 24 आवर्स में 35,000 टू 40,000 विचार करता है। आप विचार करिए 24 घंटे में इतने कौन से विचार हम करते हैं, और सिर्फ 1-10% ही यूजफुल थॉट्स हैं, बाकी सब विचार वेस्ट पेपर बास्केट में जाते हैं। तो मन की जो विचार शक्ति, संकल्प शक्ति है, वो बहुत बहुत शक्तिशाली है। उसको मुझे ट्रैक पर रखना है और ट्रैक पर रखने के लिए मुझे अपने मन को संकल्प देना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, कैसे सोचना है, किस तरह सोचना है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है और वो छोटा बच्चा चलना सीखता है, उसको चलाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, लेकिन किस रास्ते पर चलना है ये सिखाया, क्या बोलना है, कैसे बोलना है ये सिखाया, क्या सोचना है, कैसे सोचना है ये सिखाया नहीं, वैल्यूज नहीं सिखाई है, मैनर्स एटिकेट्स नहीं सिखाए हैं, सिर्फ बाकी सब कुछ सिखाया है। तो इस मन को क्या सोचना है, जो पॉजिटिव है, जो नेसेसरी है, जो टू द पॉइंट है, वही संकल्प चलने चाहिए। और उन संकल्पों को चलाने के लिए मुझे अपने में शक्ति भरनी है, और वो शक्ति देता है मेडिटेशन। थोड़ा सा मैं टाइम ले रही हूं, और वो मेडिटेशन शक्ति कैसे देता है, मेडिटेशन कोई डिफिकल्ट टेक्निक नहीं है। एक छोटा बच्चा है, आपको कहता है डैडी मुझे पैसा दो, मम्मी मुझे पैसा दो, आप कहते हैं क्यों, क्या करना है, प्लीज गिव मी मनी। वो जिद करता है, आप कहते हैं बेटा क्या चाहिए, आप बोलो हम ला करके देंगे, कहता है नथिंग डूइंग, यू जस्ट गिव मी मनी। अब 5 ईयर्स ओल्ड बच्चा है, आप उसको कितना देंगे, 5 रुपीज या 10 रुपीज, अब दे करके यू आर मोर इंटेलिजेंट दैट बॉय। आप उसको कहते हैं बेटा ये मनी बॉक्स है तो इसमें डाल दे, बाहर ले जाएगा तो गुम हो जाएगा, तेरे फ्रेंड्स छीन लेंगे, और बच्चा कन्वुंस हो जाता है और वो मनी बॉक्स में डाल देता है। नेक्स्ट डे अगेन वो वही स्टोरी रिपीट करता है, आप फिर उसको दे देते हैं, मनी बॉक्स में डलवा देते हैं। अब बच्चा रोज आपसे लेता है, मनी बॉक्स में डाल देता है। एंड ऑफ द ईयर जब बच्चे ने वो मनी बॉक्स खोला, ही गॉट ए ब्यूटीफुल बिग अमाउंट, इतना आप उसको एक साथ देते नहीं। दिस इज मेडिटेशन। मुझे घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप दिन में 16 घंटे काम करते हैं, एक घंटे में एक मिनट निकाल सकते हैं, पॉसिबल है? एक मिनट निकल सकता है ना। अब एक घंटे में एक मिनट, 16 घंटे के 16 मिनट। अब एक मिनट आपको क्या करना है, एक मिनट के लिए आप अपने मन और बुद्धि को गो डीप इनसाइड एंड हैव ए थॉट, आई एम पीसफुल, I am powerful, I am loveful, I am pure soul. एक मिनट के लिए sincerely, religiously हम उसके स्वरूप में स्थित हो जाएं। वो एक मिनट की साइलेंस। नेक्स्ट आवर आया, अगेन एक मिनट, नेक्स्ट आवर आया, अगेन एक मिनट। तो 16 घंटे के 16 मिनट हमने साइलेंस की। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एक मिनट की साइलेंस कम से कम नेक्स्ट 15 मिनट के लिए मेरे माइंड को बैलेंस स्टेबल रखेगी। तो एक मिनट की साइलेंस अगर 15 मिनट मुझे स्टेबल करती है, तो 16 घंटे के एक एक मिनट की साइलेंस और 15-15 मिनट उसका मुझे बेनिफिट मिलता है, ऑल टुगेदर कितना हो गया, 4 घंटा। 4 घंटा, 15-15 मिनट, 16 घंटे के 4 घंटे हो गए। आप कहें एक साथ ही 16 मिनट बैठ जाते हैं, आप एक साथ 16 मिनट साइलेंस में नहीं बैठ सकते। डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है आपको एक घंटे में एक टैबलेट लेनी है, आपका कौन याद रखे ये हर घंटे टैबलेट लेने की, 16 टैबलेट एक साथ ही खा लूं तो क्या होगा, वो मेडिसिन मुझे फायदा देगी या मुझे और ही रिएक्ट कर देगी? क्वेश्चन 16 मिनट का नहीं है। कंटिन्यूटी, माइंड को एनर्जी मिलती रहे, माइंड चार्ज होता रहे, और ये चार्जिंग मेरी सारी दिन की जो दिनचर्या है उसको स्टेबल करेगा, एनर्जाइज करेगा और आत्मा को शक्तिशाली बनाएगा। दिस इज मेडिटेशन।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, और मैं पिछले 20-25 दिनों से सुन रहा हूँ, हमारे हर मास्टर ऑफ मेडिटेशन ने एक अलग ही और बहुत ही सिंप्लीफाइड और यूनिक तरीके से मेडिटेशन को डिफाइन किया है, और मैं समझता हूँ ये एग्जांपल बहुत जचेगा कि ये क्वांटिटी की बात नहीं है, आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अगर चीजें करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। और इस मेडिटेशन के तरीके को आज हम आपके साथ प्रैक्टिकली भी करना चाहेंगे। हमारे दोस्तों ने जो आज सवाल पूछे, उन सभी दोस्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कमेंट्स लिखे, फीडबैक्स लिखे, शाउट आउट्स दिए, उन सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम मुलाकात करेंगे। आप सभी की तरफ से मैं शारदा दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि दीदी जी आज समय निकाल के हमारे साथ आए और उन्होंने इस खास पेशकश में आप सभी के प्रश्नों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच शारदा दीदी जी आने के लिए,
बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी,
ये अपॉर्चुनिटी तो हम सब की अपॉर्चुनिटी है दीदी कि आप आए तो हमें फायदा लेने का मौका मिला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले 3-4 मिनट के लिए आप हमें मेडिटेशन करवाएं, आपके साथ हम मेडिटेशन करें, ये भी सौभाग्य हम लेना चाहते हैं मेडिटेशन के लिए 3-4 मिनट।
ओम शांति। दृढ़तापूर्वक अपने मन को शक्तिशाली शुभ संकल्प दीजिए। कि मैं आत्मा एक शुद्ध पवित्र शांत स्वरूप हूं। आत्मा कंट्रोलर है, रूलर है। जो विचार मुझे करना है वही करूंगी। अपने मन को शुभ संकल्पों से, पॉजिटिव संकल्पों से, श्रेष्ठ स्मृतियों से भरपूर करूं। महसूस करूं इस सृष्टि नाटक पर मैं एक रियल एक्टर के रूप में हूं, और जो कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक मेरी एक्टिंग चल रही है उस पर अटेंशन रखकर वो एक्टिंग अलर्ट होकर एक्यूरेट और परफेक्ट करूं। जो मेरी एक्टिंग मन के विचारों की, दृष्टि की, वाणी की और व्यवहार की है, मेरे आसपास के परिजनों, साथियों और समाज को इंस्पिरेशंस देने वाली, मोटिवेट करने वाली हो। मैं शक्तिशाली आत्मा जैसा कर्म करूंगी मुझे देखकर और भी सभी करेंगे, ऐसे अपने लक्ष्य को दृढ़ करेंगे, उसी अनुसार स्वयं में श्रेष्ठ लक्षणों को धारण करूंगी और अनेकों के सामने वही आदर्श, वही उदाहरण प्रस्तुत करूंगी। क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा, तो सर्वप्रथम मैं अपनी दृष्टि को और वृत्ति को परिवर्तन करूं, सर्व के प्रति अंदर में शुभ भावना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, निस्वार्थ स्नेह को अपने अंदर जागृत करूं। जो मैं चाहती हूं, जो दूसरों से चाहती हूं, वो स्वयं अपने जीवन में धारण करूं, तो स्वतः ही सामने वाला परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी शुभ भावनाओं से, निर्माण भावनाओं से स्वयं को हम भरपूर करते रहें और सबके प्रति एक स्नेह, सहयोग और सद्भावना जो समय की पुकार है, ऐसी अपनी श्रेष्ठ भावनाओं के शुभ संकल्पों से सारे नेगेटिव भय के वातावरण को परिवर्तन करने के लिए अपने शुभ संकल्पों का सहयोग देकर के सभी आत्माओं को शांति, शक्ति, हिम्मत, उमंग और उत्साह को बढ़ाने के लिए ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस दें, जिसमें स्वयं का व सर्व का कल्याण हो, ऐसी भावनाएं सारा दिन कर्म करते हुए एक दूसरे के प्रति वाइब्रेट करते रहें, वाइब्रेट करते रहें, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।